नमो बुधाय। जय भीम। वालेकुम अस्सलाम। So, and peace be upon you. In Christian Europe, they used to say Pax Vobiscum, which means peace be with you. Don't worry.
तो उत्तरी यूरोप में ऐसा कहते हैं कि पीस बी विथ यू, ताकि शांति आपके साथ भी बनी रहे।
शांति आपके साथ। So, we're continuing to explore this puja.
तो हम इस पूजा की और आगे देखने वाले हैं।
I've got the three jewels around my neck again.
तो मेरे गर्दन के पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास वापस त्रिरत्न है।
So we looked at the Buddha this morning.
तो आज सवेरे हमने बुद्ध की तरफ देखा।
Although we'll have much more to say about him as the days go by.
और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे उनके बारे में कहने के लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है।
But I need to move on to the second line of the first part.
लेकिन पहले भाग की जो दूसरी पंक्ति है उसकी और मुझे बढ़ना है।
We reverence the Dhamma, the teaching of the Buddha, which leads from darkness to light.
तो नमन करते हैं हम धम्म को, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाती है।
So in India today we always talk of the Dhamma as the teaching of the Buddha.
तो भारत में हम अभी धम्म के बारे में हम अक्सर ऐसे बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के स्वरूप में।
And that comes from the Pali language.
और ये पाली भाषा से आती है।
Which is of course a relative of Sanskrit.
जो कि संस्कृत की रिश्तेदार है।
And it's an ancestor of modern Indian languages, North Indian languages.
और आधुनिक जो भारत की उत्तर की भाषाएं हैं उसकी वो मतलब जन्मदात्री हैं।
So Dhamma is related to Dharma.
तो धम्म का संबंध है धर्म से।
But because in modern Indian languages Dharma just means religion in general, we always speak of Dhamma when we're talking of the Buddha Dhamma.
तो क्योंकि आधुनिक भाषा में जब हम धर्म कहते हैं उसका अर्थ केवल धर्म या रिलीजन रह जाता है, इसलिए हम धर्म शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए धम्म शब्द का प्रयोग करते हैं।
So when we say we reverence the Dhamma, we mean in the specifically Buddhist sense.
तो जब हम कहते हैं कि हम धम्म को नमन करते हैं, तो उस वक्त हम विशेष तौर से बौद्ध संदर्भ का प्रयोग कर रहे होते हैं।
But it comes from the same root.
लेकिन ये भी उसी मूल से आता है।
And well, what does it mean?
लेकिन फिर इसका अर्थ क्या है?
Again, this could take us two or three weeks to explain the meaning just of that word Dhamma.
तो सिर्फ धम्म इस शब्द का अर्थ जानने के लिए भी हमारे दो से तीन हफ्ते हमें लग सकते हैं।
But it comes from an Indo-European root, which means that which supports, that which upholds.
तो लेकिन इसका जन्म हुआ है इंडो-यूरोपियन भाषाओं में से, जिसका अर्थ होता है कि वो जो हमें आधार देता है।
And it comes then to mean the principle, which is the underlying truth of reality.
तो इसका अर्थ वो होता है कि वो सत्य जो वास्तविकता के गर्भ में होता है, आधारभूत होता है।
So, well, we talk of the Buddha having woken up.
तो हमने ये बात की थी कि बुद्ध जागृत हो चुके थे।
So what did he wake up to?
तो वो किस बात के प्रति जागरूक हो गए थे?
He woke up to the truth of things.
तो वो चीजों की वास्तविकता के प्रति या सच्चाई के प्रति जागरूक हो गए थे।
That means he woke up to the Dhamma.
इसका अर्थ ये होता है कि वो धम्म के प्रति जागरूक हो गए थे।
He saw things as they really are.
तो चीजें जैसी है वैसी उन्होंने देख ली थी।
He was no longer confused, no longer ignorant.
तो अब उनके मन में कोई संभ्रम नहीं था या कोई अज्ञान नहीं था।
So you could say the content of the Buddha's experience was the Dhamma.
तो बुद्ध के अनुभवों का जो भी सार है वो धम्म है।
That's what he saw, so to speak.
और कहा जाए तो एक तरह से यही है जो उन्होंने देखा था।
You could even say that's what he became.
और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यही है जो वो बन गए थे।
He was completely in tune with the way things are.
तो जिस स्वरूप में चीजें वास्तव में हैं, उसके साथ वो पूरी तरह से एक रूप हो गए थे।
So you know at Bodh Gaya in Bihar. He sat under the Bodhi tree and he gained awakening.
तो आप जानते हैं कि बोधगया में बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे और उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की।
I'm sure many of you have been there and seen that place.
तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग शायद वहाँ पे गए होंगे और उन्होंने वो जगह देखी होंगी।
Of course, at that time there was no temple there.
हाँ निश्चित ही उस वक्त वहाँ पर वो कोई मंदिर नहीं था.
There was no village.
और वो गांव भी वहाँ नहीं था.
Just a jungle.
वो सिर्फ एक घना जंगल था.
There were a few small villages around, but he was out in the open jungle.
तो आजू बाजू में कुछ छोटे छोटे गांव थे लेकिन वो जो है जंगल के भीतर थे.
He was all alone.
और वो पूरी तरह से अकेले थे.
He sat under that tree determined not to get up until he saw the truth.
और वो उस पेड़ के नीचे ये दृढ़ निश्चय करके बैठे थे कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मैं सच्चाई को जान न लूं.
And yes, he woke up.
और हाँ वो जाग गए थे.
He woke up to the Dhamma.
और वो धम्म के प्रति जागरूक हो गए थे.
So we're told he spent several days around the Bodhi tree.
और हमें बताया जाता है कि बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द उन्होंने कई हफ्ते बिताए.
He'd seen something that nobody had seen before.
और उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया था जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था.
You can imagine his position at that time.
तो आप उस वक्त की उनकी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं.
He felt there was nobody to whom he could communicate.
तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा कोई है नहीं जिसके बारे में जिसके साथ मैं इस विषय में बातचीत कर सकता हूं.
He would sort of say something but nobody be able to understand him.
तो वो अगर कुछ कहे भी तो कोई उसे समझ नहीं पाएगा.
So we're told that to begin with he thought, well, I'll just keep quiet.
तो हमें बताया जाता है कि शुरुआत में उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं मैं चुप रहूंगा.
You know, I'll try to communicate with people and they won't understand.
तो मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा उन्हें बताऊंगा पर वो समझ नहीं पाएंगे.
And you know what that experience is like.
और आप जानते हैं कि अनुभव किस प्रकार का होता है.
You know, so everybody's had that experience sometimes of trying to explain to something. To somebody and they just won't listen.
तो आप सबको ये अनुभव आया होगा कि आप कभी किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे समझ में नहीं आता.
Or they completely misunderstand what you're saying.
या वो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका पूरी तरह से गलत अर्थ निकाल लेते हैं.
So yeah, you can't speak.
तो आप कुछ कह ही नहीं पाते.
And the Buddha first of all thought, well, I'm not going to be able to tell anybody this.
और बुद्ध को पहले ऐसे लगा कि नहीं इस विषय में मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा.
Nobody's going to be willing to listen to me.
या कोई मैं क्या कह रहा हूँ इसे सुनना भी नहीं चाहेगा.
You can imagine in from his point of view what a lonely position that was.
तो उनके दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आप कल्पना कर पाएंगे कि वो कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे.
Not that of course he felt lonely in the ordinary sense.
तो आमतौर पे जिसे हम अकेलापन कहते हैं ऐसा अकेलापन वो महसूस नहीं कर रहे थे.
But what he experienced was intensely creative.
लेकिन जो वो महसूस कर रहे थे वो बहुत ही अधिक सृजक था.
And the nature of what he'd seen was to liberate people.
और जो कुछ उन्होंने देखा था उसका स्वभाव ऐसा था कि वो लोगों को विमुक्त करने वाला था.
Because when you see the Dhamma, you're free.
क्योंकि जब आप धम्म को देख लेते हैं आप विमुक्त या स्वतंत्र हो जाते हैं.
You no longer suffering.
उसके बाद आप दुख में नहीं रहते.
Of course, if you cut yourself, you'll feel it.
हाँ अगर आप अपने आप को काट लेते तो निश्चित ही आपको वो महसूस होगा.
But you don't feel all the psychological or the emotional pain that so many of us feel.
लेकिन मानसिक या भावनिक तरह का जो दुख या दर्द होता है उस तरह का आपको महसूस नहीं होता.
So of course he wanted people to know that.
तो निश्चित ही वो चाहते थे कि लोग इसके बारे में जानें.
But he couldn't communicate.
लेकिन वो बता नहीं सकते थे.
So he first of all, we're told, thought of just staying in the jungle, just enjoying his freedom.
तो हमें बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं जंगल में ही रहूंगा और अपनी स्वतंत्रता या विमुक्ति का मैं आनंद उठाऊंगा.
But we brothers and sisters are extremely fortunate.
लेकिन भाई और बहनों हम बहुत ही सुदैवी हैं.
Because he didn't do that.
क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया.
He realized that human beings are in different stages of growth.
तो उन्हें ये महसूस हुआ कि मनुष्य जो है विकास के अलग अलग सतह पे है.
Some people are very blind.
कुछ कुछ लोग जो है वो बहुत ही अंधे हैं.
There's an English expression, there's none so blind as those who will not see.
तो इंग्लिश में कहावत है कि कोई इतना अंधा नहीं होता है उसकी तरह की जो देखना ही नहीं चाहता है.
शाबाश. if you just won't see, then you don't see.
अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपको नहीं दिखाई देगा.
So most people they wouldn't see.
तो बहुत से लोग देखते ही नहीं हैं.
But he realized that some people their eyes were a little bit open.
लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हैं.
You know when you get up in the morning and sometimes you have to open your eye a little bit because it's you don't want to see.
तो कभी कभी आप सवेरे जागते और आप सोना नहीं चाहते तो आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास करते हैं.
But some people, their eyes were a little bit open.
लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी आंखें थोड़ी सी खुली थी.
Maybe even more important, their ears were a little bit open.
या इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनके कान थोड़े से खुले थे.
So he saw that people were in different stages of yes, development.
तो उन्होंने ये देखा कि लोग विकास के अलग-अलग स्तर पे थे.
And we're told that he had a sort of vision.
तो हमें ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कुछ तो उनके दृष्टि में आया.
He saw all of humanity like lotus plants in a pond.
तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे मनुष्य प्रजाति को उन्होंने एक तालाब में जो कमल के पुष्प है खिलते हुए उसके स्वरूप में देखा.
And of course, lotuses grow deep down in the mud.
और जो ये कमल के फूल होते हैं कीचड़ में बहुत गहरे खिलते हैं.
And then they push up through the water.
और फिर वो पानी को धकेलते हुए ऊपर आते हैं.
Then they stand above the water.
और फिर वो पानी से ऊपर आ जाते हैं.
Then slowly the bud opens.
और फिर धीरे धीरे वो कली जो है वो खिलने लगती है.
So the Buddha saw us all like lotuses in a lotus pond.
तो बुद्ध ने हम सभी को उस कमल दल में कमल के पुष्पों की भांति देखा.
Of course, our buds are a little bit open.
लेकिन निश्चित ही हमारे जो कलियां हैं वो थोड़ी बहुत खिली हुई थी.
In this part of the lotus pond, we're a little bit open.
तो कमल दल के इस भाग में हम थोड़े बहुत खुले हुए हैं.
So when the bud is a little bit open, the light of the sun can reach it.
तो जब ये कली थोड़ी सी खिली हुई होती है तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर सकती है.
So yes, the Buddha saw that people were in different stages of development.
तो बुद्ध ने देखा कि लोग विकास के अलग-अलग स्तर पे हैं.
They were in different stages of openness to the truth.
तो सत्य को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसके वो अलग-अलग स्तर पे थे.
So he realized, okay, I can go to those who are a bit open.
तो उन्होंने ये तय किया कि हाँ मैं उनके पास जा सकता हूँ जो थोड़े बहुत खुले हैं.
And well, he set out on his mission in the world.
और फिर उनका जो जीवन में जो उनका लक्ष्य था उसकी ओर वो बढ़ने लगे.
And he spent the next 50 years or so just wandering through North India, from Bihar, UP, even across to Haryana.
और फिर अगले 50 साल तक वो उत्तर भारत में बिहार, यूपी, हरियाणा यहाँ पर भ्रमण करते रहे.
And he taught the Dhamma wherever he went.
और जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्होंने धम्म की शिक्षाएं दी.
And he found many, many people who heard his message.
और उन्हें ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को सुना.
And of course, as a result of that, it's come to us.
और उसी के फलस्वरूप वो हमारे पास भी पहुंचा है.
Even to an Englishman in London.
और एक अंग्रेज के पास लंदन तक भी वो पहुंच गया.
The Buddha's teaching has come even to somebody like me.
और बुद्ध की शिक्षाएं मेरे जैसे किसी के पास भी पहुंची.
And because of Dr. Babasaheb Ambedkar, it's come to you.
और बाबा साहब अंबेडकर की वजह से वो आप तक भी पहुंची है.
So yes, the teaching of the Buddha is the Dhamma itself.
और इसीलिए बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वही अपने आप में धम्म है.
It's what the Buddha saw and it's what he communicated.
तो ये वो है जो बुद्ध ने देखा और जिसके बारे में बुद्ध ने बताया.
So the Buddha communicates to us his experience of the truth.
तो बुद्ध हमें उनके वास्तविकता के अनुभव के विषय में बताते हैं.
His experience of the truth isn't conceptual.
तो उनका जो सत्य का अनुभव है वो तत्वज्ञान के स्वरूप में नहीं है.
It's not a merely scientific understanding.
तो या कोई एक वैज्ञानिक समझ भी नहीं है वो.
It's not abstract knowledge.
वो एक मतलब जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं है.
It's direct experience of the true nature of things.
तो चीजों का जो वास्तविक अनुभव है उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव वो है.
So the teaching of the Buddha is what helps us to awaken.
तो बुद्ध की शिक्षाएं वो है जो हमें जागृत करने में सहायता करती है.
Whatever the Buddha does or says is an attempt to help us to wake up like he woke up.
तो बुद्ध जो भी कहते हैं या करते हैं वो एक प्रयास है हमें जागृत होने के लिए मदद करने के लिए जैसे वो स्वयं जागृत हुए थे.
Of course, words are one of the major ways in which the Dhamma is communicated.
और निश्चित ही धम्म जिस भी स्वरूप में बताया जाता है उसमें शब्द एक प्रमुख माध्यम है.
That's the way we can easily communicate our experience to somebody else.
और ये सबसे सरल माध्यम है जिससे हम अपना अनुभव किसी और तक पहुंचा सकते हैं.
The Buddha used many other ways of
communicating. लेकिन ये पहुंचाने के लिए बुद्ध ने अन्य कई माध्यमों का उपयोग किया.
He communicated through poetry, as I've already said.
जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ, उन्होंने काव्य के माध्यम से भी इसे बताया.
He communicated through practices like the meditations that you did this morning.
तो कुछ अभ्यासों के माध्यम से भी उन्होंने बताया, जैसे ध्यान जो आपने आज सवेरे किया.
He communicated through customs and manners.
तो जो परंपराएं हैं, आचरण पद्धतियां हैं, उसके सहायता से भी बताया.
He even communicated in silence.
तो मौन के माध्यम से भी उन्होंने इसे बताया.
It's amazing how much can be communicated without saying anything.
तो ये भी आश्चर्य की बात है कि बिना कुछ कहे भी कितना कुछ कहा जा सकता है.
In the very, very famous occasions in the Buddhist sutras where the Buddha communicates without saying a word.
तो बहुत से ऐसे प्रसंग आपको बौद्ध ग्रंथों में मिलेंगे कि जहाँ बुद्ध बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं.
There's a famous school of Buddhism, mainly in China and Japan, called Chan or Zen Buddhism.
तो चाइना और जापान में बौद्ध संप्रदाय के कुछ पंथ है जो से चैन या ज़ेन कहा जाता है.
That was founded, in fact, by that Bodhidharma from Vishakhapatnam area that we talked of in Qigong.
तो जो विशाखापट्टनम के बोधि धर्म है उन्होंने उसकी स्थापना की थी, जिसके बारे में हमने चिकुंग करते हुए बात की थी.
But there's a story that that tradition started in India.
लेकिन ऐसे कहानी है कि ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत भारत में हुई थी.
The Buddha was sitting with his disciples around him.
तो बुद्ध अपने इर्द गिर्द अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे.
You can imagine the Buddha is there with you.
तो आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध यहाँ अभी आपके साथ हैं.
You're waiting for his teaching.
और आप उसके उनके शिक्षाओं का राह देख रहे हैं.
The Buddha just sat there.
लेकिन बुद्ध वहाँ पे बैठे हुए हैं.
Didn't say anything.
और बुद्ध कुछ भी नहीं कह रहे.
So everybody's sort of waiting. Okay, what are you going to say? Come on.
और आप सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप क्या कहने वाले हैं.
But yeah, the Buddha just sat there.
लेकिन बुद्ध सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए.
And then he just lifted up a golden flower that was growing on the ground in front of him.
और तभी उनके सामने जो जमीन है वहाँ पे एक जो सुनहरा पुष्प खिल रहा था, उस पुष्प को उन्होंने केवल उठाया.
He just held it up.
और उन्होंने सिर्फ ऐसा आपके सामने पकड़ के रखा है.
Then one disciple, his name was Mahakashyapa, understood.
और उनमें से उनका जो एक शिष्य है महाकाश्यप, जिनका नाम था, उन्हें समझ आया.
And he just smiled.
और वो मुस्कुरा दिए.
So the whole tradition of Chan and Zen Buddhism comes from that golden flower.
तो चैन और ज़ेन जो पूरा संप्रदाय या परंपराएं हैं, उस सुनहरे पुष्प से निर्मित हुई है.
So you awakened.
तो आप जागृत हुए.
Just that one golden flower.
सिर्फ उस एक सुनहरे पुष्प की वजह से.
Maybe our lotus buds are not so very open yet.
शायद हमारी कलियां उतनी कमल की उतनी खिली हुई नहीं है.
Let's see by the end of the weekend.
तो ये शिविर समाप्ति तक हम देखते हैं. सप्ताह समाप्ति.
The teaching isn't to do with words.
तो शिक्षाएं जो है वो हमेशा ही शब्दों से संबंधित नहीं होती.
Of course, words are very important in communicating.
निश्चित ही कोई चीज पहुंचाने के लिए शब्द बहुत उपयोगी होते हैं.
But what is communicated isn't defined by the words.
लेकिन जो भी मतलब शब्दों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, उस शब्द ही केवल उसकी व्याख्या नहीं करते.
In the end, the Buddha communicated himself.
क्योंकि अंत में बुद्ध ने स्वयं को ही उन तक पहुंचाया था.
So yes, we reverence the Dhamma, the teaching of the Buddha.
और इसलिए हम धम्म को नमन करते हैं जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं.
Because that teaching of the Buddha helps us to grow.
क्योंकि बुद्ध की वो जो शिक्षाएं हैं हमें विकास करने के लिए सहायता करती
हैं. It's liberated so many people in human history.
और मानवीय इतिहास में उन्होंने कई लोगों को विमुक्त किया है, स्वतंत्र किया है.
In the early period of Indian history, it created a remarkable society.
और मतलब प्राचीन इतिहास में उन्होंने बहुत ही लक्षणीय ऐसे समाज की निर्मिति की थी.
Especially at the time of Samrat Ashok.
और खासकर सम्राट अशोक के दौर में.
And well, we have to try to bring back that to India again.
और हमें निश्चित ही भारत में वो दौर वापस लाना है.
We have to spread it throughout the world.
और हमें पूरे संसार में इसे फैलाना है.
So this teaching is worthy of reverence indeed.
और इसलिए ये जो शिक्षा है निश्चित ही नमन के या आदर के पात्र हैं.
Because it contains what we most need.
क्योंकि इसमें वो है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है.
So, we reverence the Dhamma, the teaching of the Buddha, which leads from darkness to light.
और इसलिए हम नमन करते हैं हम धम्म को जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं.
Well, I talked quite a bit about that this morning, didn't I?
और आज सवेरे मैंने इसके बारे में बहुत बात की है.
I talked about the symbolism of darkness and light.
और मैंने अंधकार और प्रकाश का जो रूपक है इसके विषय में बात की थी.
Darkness is such a powerful image for ignorance.
और अज्ञान को दर्शाने के लिए अंधकार ये बहुत ही तगड़ा ऐसा रूपक है.
And light is such a powerful image for truth.
और प्रकाश के लिए सत्यता के लिए प्रकाश ये बहुत ही सशक्त ऐसा रूपक है.
So, yes, the teaching of the Buddha leads us from the darkness of ignorance to the light of wisdom, of truth.
और इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं हमें अज्ञान के अंधकार से सत्यता के प्रकाश की ओर लेकर जाती है.
So surely that is worthy of reverence.
और इसलिए निश्चित ही वो आदर के या नमन के पात्र हैं.
That's perhaps the most precious thing we could have.
और ये सबसे मौल्यवान ऐसी चीज है जो हम पा सकते हैं.
If we've got the teaching that will lead us into the light, well, of course we reverence it.
और अगर निश्चित ही हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है तो हम उसे नमन करते हैं.
So, one final jewel.
और एक अंतिम रत्न.
We reverence the Sangha.
हम संघ को नमन करते हैं.
The fellowship of the Buddha's disciples that inspires and guides.
और जिसमें सहचार्य है बुद्ध शिष्यों का जो प्रेरणा देता है और मार्गदर्शन देता है.
So, the Sangha, what is the Sangha?
तो संघ संघ क्या है?
I didn't realize when I first came to India just how common a word Sangha is.
तो जब मैं पहली बार भारत में आया तब मुझे ये पता नहीं था कि संघ कितना आम शब्द है.
I saw the word Sangha everywhere once I'd begun to be able to make out the script.
तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था मतलब हिंदी वगैरह तो हर जगह मुझे संघ संघ ये शब्द दिखाई देता.
And I even heard about this Sangha Parivar.
और मैं संघ परिवार के बारे में भी सुना था.
But I thought, that sounds wonderful.
और मुझे लगा था कितनी अच्छी बात है.
But I began to realize Sangha has a very general meaning in Indian language.
और मुझे ऐसा लगा कि भारत में संघ का बहुत ही आम ऐसा मतलब है.
It just means an association, an assembly. Yeah?
तो इसका अर्थ होता है कि कुछ लोग जो है वो इकट्ठा आए हुए उनका वो गुट है.
I can't remember, I saw something once, it was something like the gun Sangha.
तो मैंने एक बार ऐसा सुना था गन संघ.
नो गन नॉट बैंग बैंग या दैट बैंग बैंग नॉट गन या
वो बंदूक वाला संघ.
सो आई थॉट वेल दैट डजंट साउंड लाइक अ संघ टू मी.
तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ संघ के जैसा नहीं है.
सो इट जस्ट मींस व्हाट वी यूज इन इंग्लिश इज एसोसिएशन और क्लब और समथिंग लाइक दैट.
तो इंग्लिश में जिसे हम एक क्लब या गुट की तरह देखते हैं वैसा इसका मतलब था.
बट इन द बुद्ध धम्म इट्स वन ऑफ आवर थ्री जूल्स.
लेकिन बौद्ध धर्म में ये हमारे त्रिरत्नों में से एक रत्न है.
एंड इन मेनी वेज इट्स द वन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस प्रैक्टिकली स्पीकिंग.
और बहुत से तरह देखा जाए तो मतलब व्यवहारिक स्वरूप से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है.
I think maybe you've already begun to experience that here.
और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक शायद आपने उसका अनुभव लेने का आरंभ भी कर दिया होगा.
Yes, it's good to be with the Buddha, so to speak.
हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बुद्ध के साथ हैं.
It's good to hear the Dhamma and to practice the Dhamma.
तो धम्म के बारे में सुनना और उसका आचरण करना भी अच्छा है.
But to be with other people who share your interest, your reverence is really wonderful.
लेकिन ऐसे लोगों के साथ होना कि जो आपका मतलब आपकी पसंद को बांटते हैं या आपके आदर स्थान को बांटते हैं उसके साथ होना बहुत ही बड़ी बात है.
So sangha is for us probably the most powerful experience of the three jewels.
तो संघ हमारे लिए त्रिरत्नों का बहुत ही सशक्त ऐसा अनुभव है.
So what exactly does it mean?
तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है?
Well, it's got different levels to it, you could say.
तो इसके अर्थ के अलग अलग स्तर हैं आप कह सकते हैं.
First of all, it just means all of those who are disciples of the Buddha.
तो सबसे पहले इसका अर्थ तो होता है वो सब लोग जो बुद्ध के शिष्य हैं.
All of those who genuinely take the Buddha as their ideal.
और वो सारे लोग जो प्रामाणिक रूप से बुद्ध को अपने आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं.
All of those who try to practice the Dhamma.
वो सारे लोग जो धम्म का आचरण करने का प्रयास करते
हैं. That's the sangha.
वो संघ है.
To some extent, we're a sangha here.
और एक तरह देखा जाए तो हम सब यहाँ पर संघ हैं.
Because when you come together on that basis, a special sort of contact develops between you.
क्योंकि अगर आप उस आधार पे इकट्ठा आते हैं तो आप सब लोगों में एक विशिष्ट प्रकार का संबंध प्रस्थापित होता है.
You know you're with people who share your fundamental values.
तो आपको पता होता है आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके मूलभूत मूल्यों को मतलब समझते हैं और उनके मूल्य भी वही हैं.
You don't have to keep explaining yourself. You don't have to keep being sensitive and keeping quiet about certain things.
तो आपको उन्हें हमेशा कुछ तो समझाते बैठने की आवश्यकता नहीं होती या उन्हें क्या लगेगा ऐसा सोच के चुप रहने की भी आवश्यकता नहीं.
You can really open up about what is important to you.
तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है इसे आप खुलेपन से कह सकते हैं.
You know, I remember when I first got involved in the Buddha Dhamma, I would talk to some people and they'd sort of say, well, why are you interested in that?
तो मुझे याद है कि जब मैं बुद्ध धम्म को जानना शुरू किया था मैं कुछ लोगों से बात करना करता था और वो कहते थे कि तुझे इसमें क्यों मतलब मजा आ रहा है.
I was at university at the time.
तो उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ा करता था.
So people were saying, well, just get on with your career. Don't bother about that stuff.
तो लोग कहते थे कि तुम अपने करियर के ऊपर ध्यान दो और ऐसी सब चीजों पे ध्यान मत दो.
And it's very frustrating because something is really important to you. You can't share.
तो ये बहुत ही निराशाजनक था कि कुछ तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आप वो किसी से बांट नहीं पा रहे.
So the beginning of sangha is being with people who share your values.
तो शुरुआत में संघ मतलब उन लोगों के साथ होना जो आपके मूल्यों को समझते हैं.
Especially with people who share the three jewels with you.
या उन लोगों के साथ होना कि जो त्रिरत्नों के आपके साथ साझेदार हैं.
And of course, as people become more and more deeply committed to these ideals, well, you can share more and more with them.
और जैसे अधिक अधिक मतलब गहराई से या प्रामाणिकता से लोग इसके साथ प्रतिज्ञाबद्ध होते जाते हैं उतनी ही ज्यादा गहराई से आप उनके साथ बात कर सकते हैं.
That's what our Triratna Buddhist order is.
और यही हमारा जो है त्रिरत्न बौद्ध संघ है.
It's a community of men and women who are committed to the three jewels.
तो ये स्त्री और पुरुषों का ऐसा संघ है जो त्रिरत्नों को प्रतिज्ञाबद्ध है.
That's in a way what our whole community is, our Mahasangha.
और एक तरह से हमारा पूरा महासंघ भी इसी प्रकार का संघ है.
People who are really deeply interested in the three jewels.
तो ऐसे लोग जो बहुत ही गहराई से त्रिरत्नों में रुचि रखते हैं.
And this is a very important experience of Sangha.
और ये संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अनुभव है.
But the sangha has a deeper and higher meaning.
लेकिन संघ का इससे भी गहरा और इससे भी ऊंचा ऐसा अर्थ है.
It means all those disciples of the Buddha who've opened up, who've wakened to the truth.
तो उनका अर्थ ऐसा है बुद्ध के वो सारे शिष्य जो कि खिले हुए हैं मतलब सत्य को उन्होंने जान लिया है.
And they form, if you like, an ideal society.
और वो एक आदर्श समाज की निर्मिति करते हैं अगर आप ऐसा कहना पसंद करें तो.
Well, we could borrow terms from the Indian Constitution.
तो हम भारत के संविधान से कुछ शब्द उधार ले सकते हैं.
They live together in perfect liberty, equality and fraternity.
तो वहाँ कहा गया है कि वो सभी पूरी तरह से स्वतंत्रता समता और बंधुत्वता के साथ रहते हैं.
There's complete liberty because they respect each other's freedom.
तो यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता है क्योंकि लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं.
They recognize each other as responsible.
तो वो एक दूसरे को स्वयं के लिए जिम्मेदार स्वरूप में देखते हैं.
They treat each other equally.
और वो एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं.
What that really means is they don't think about equality or inequality.
तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो समानता या असमानता के बारे में केवल विचार कर रहे हैं.
When you're with a friend, you don't think, oh, I'm equal to him or her.
तो जब आप किसी मित्र के साथ होते हैं तो आप इस तरह से विचार नहीं करते कि हाँ मैं उसके एकदम बराबरी का हूँ समान.
You're just communicating. You're just friends.
आप सिर्फ बातचीत कर रहे होते हैं आप मित्र होते हैं.
That's real equality.
और वही सही समानता होती है.
Well, you really respect each other as individuals.
जब आप एक दूसरे का एक व्यक्ति के तौर पे सम्मान करते हैं.
And you communicate freely with each other.
और आप एकदम स्वतंत्रता से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं.
And then, of course, fraternity.
और फिर निश्चित ही बंधुता.
Well, Baba Sahib says that fraternity means maitri.
और बाबा साहब कहते हैं कि बंधुता का अर्थ होता है मैत्री.
So this perfect society, everybody relates to everybody else with love.
तो एक आदर्श समाज में हर एक इंसान दूसरे से इस तरह से संबंध स्थापित करता है मतलब प्रेम के साथ
with Maitri,
मैत्री के साथ.
So yes, the highest form of sangha is this community of those who've realized the Buddha's dhamma.
तो इसका सबसे ऊंचा अर्थ ये होता है कि वो समाज जिसने बुद्ध के सत्य को अनुभव लिया है समझा है.
And they live together on the basis of liberty, equality, and fraternity.
और वो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आधार पर एक दूसरे के साथ रहते हैं.
So they form a model for the whole of society.
तो इसलिए वो पूरे समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं.
They form the what pulls the whole of society up.
तो वो चीज निर्माण करते हैं जो कि समाज की ताकत को जो है वो ऊपर खींचता है.
And of course, they are a source of inspiration and guidance to the rest of us.
और इसीलिए वो प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है हमारे लिए.
So the fellowship of the Buddha's disciples.
तो इसीलिए बुद्ध के शिष्यों का साहचर्य, सहजीवन या साथ रहना.
People practicing the Buddha Dhamma together.
तो वो लोग जो एक साथ बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं.
Entering into deep friendship with each other.
और एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता में प्रवेश कर रहे हैं.
Communicating with each other deeply, honestly.
और बहुत ही गहराई से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ.
And that's a source of enormous inspiration.
और ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो है वो प्रेरणा का स्रोत है.
So these are the three jewels that we're reverencing.
तो ये वो तीन रत्न हैं जिन्हें हम नमन कर रहे हैं.
I think you probably got a fairly good idea of what these mean, even if we need to go into them further.
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छे तरह से समझ आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या है, भले ही हम ऊपर से उन्हें देख रहे हैं.
But let's see if there's anything you want to make clear about them.
लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसी कोई और बात है जिसके विषय में आपको अधिक स्पष्टता चाहिए.
You've been sitting patiently, quietly.
आप बहुत ही शांतता से और धैर्य के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं.
Anything you want to ask me, anything you want to quarrel with me about.
तो ऐसे कोई बात है जिसके बारे में आप मुझे पूछना चाहते हैं या मेरे साथ उसके बारे में तर्क वितर्क वाद विवाद करना चाहते हैं.
Anything that needs greater clarity.
ऐसा कुछ है जिसके विषय में आपको अधिक स्पष्टता चाहिए.
Any questions?
कोई सवाल है? When Buddha got enlightenment, all his doubts were gone. Then how this did this doubt came into his mind whether people would understand or not?
Huh. Yeah. Can you say the question in Hindi?
तो उनका सवाल ये है कि जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो उनके मन की तो सारी शंकाएं कुशंकाएं दूर हो गई थी. फिर ये शंका उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई कि लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे?
Well, there's a difference between doubts about the nature of reality and doubts about facts, if you like.
तो जो शंकाएं हैं वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे चीजों के वास्तविक स्वरूप के विषय में शंकाएं और जो तथ्य है उनके विषय में शंकाएं.
So for instance, the Buddha is said to understand the truth about everything.
तो कहा जाता है कि बुद्ध जो है हर चीज के विषय का जो है सत्य वो जान गए थे.
But that doesn't mean that he knows whether the trains are going to run on time.
लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें ये पता है कि ट्रेन वक्त पे आएगी या नहीं आएगी.
It doesn't mean that he knows whether the light is going to come on or not.
तो उन्हें ये भी नहीं पता कि लाइट आने वाली है या नहीं आने वाली.
It's very difficult to know in India. Yeah.
और भारत में ये जानना बहुत ही मुश्किल है.
So yes, the Buddha doesn't know necessarily those sort of things.
तो इस तरह की चीजें जो है बुद्ध को निश्चित ही पता नहीं है.
So maybe you could say that the Buddha had to sort of understand, he had to work out how to communicate.
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्ध को ये जानने या समझने की आवश्यकता थी कि किस तरह से बताया जाए.
How is he going to get across to people?
तो वो लोगों का सामना किस तरह से कर पाएंगे?
So that it's a different kind of doubt, and it's not exactly a doubt that he had. It's more a question how to do it.
तो ये अलग तरह की एक शंका थी और इसे शंका भी नहीं कहा जा सकता, एक तरह से ये उनके सामने सवाल था कि किस तरह से वो इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे।
और कुछ?
तो वो पूछ रहे हैं कि कमल का महत्व क्या है और बुद्ध अक्सर कमल का इस्तेमाल क्यों करते हैं।
Well, clearly because the lotus, you know, it's a very powerful symbol of growth.
क्योंकि कमल जो है विकास का बहुत ही सशक्त ऐसा रूपक है।
Some people say that there was actually a lotus pond where he was and he saw those lotuses growing.
कुछ लोग कहते हैं कि जहां वो थे वहां वास्तव में एक कमल का तालाब था और उन्होंने उसमें कमल को खिलते हुए देखा।
And they've in fact now formed a lotus pond at Bodh Gaya.
और उन्होंने अब बोधगया में एक कमल का तालाब भी बनाया है।
But I think when you see lotuses, they immediately suggest something to you.
लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कमल को देखते हैं वो तुरंत ही आपको कुछ सूचित करते हैं।
We don't have lotuses in Britain.
तो ब्रिटेन में हमारे पास कमल नहीं है।
Well, only in botanical gardens, that sort of thing.
Yeah. तो जो हमारे बॉटनी के जो वहाँ पे उद्यान होते हैं वहीं पर आप इन्हें देख सकते हैं।
There's a garden in London called Kew Gardens, which is the Royal Botanical Gardens, and they have lotuses there.
तो लंदन में एक उद्यान है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, एक उद्यान है वहाँ पे आप कमल देख सकते हैं।
So I'd never seen a lotus until I came to India, apart from at Kew.
तो जब तक मैं भारत नहीं आया था तब तक मैंने कमल देखा ही नहीं।
And I remember the first time I saw them, just being amazed.
तो मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने उसे देखा था मैं बहुत ही अचंभित हो गया था।
It's a rather dirty tank somewhere in Chhattisgarh.
तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही गंदा सा ऐसा एक तालाब है।
And there in this rather dirty tank is beautiful flowers.
और उस गंदे से तालाब में बहुत ही सुंदर ऐसा पुष्प था।
So the suggestion is something that grows deep in the mud.
तो वो ऐसा सूचित करता है कि ऐसा कुछ है जो बहुत ही गहराई में और कीचड़ में खिलता है।
In the mud of human nature, you could say.
तो मानवीय स्वभाव का जो कीचड़ है उसमें ये खिलता है।
It stands pure, clear of the water.
और वो एक शुद्धता के साथ वो मतलब पानी से अस्पर्श ऐसा खिला हुआ रहता है।
And of course, the lotuses, they have. I read something about this recently. They have a special kind of petal.
और अभी मैंने हाल ही में पढ़ा है कि कमल के जो है अलग ही तरह के पंखुड़ियां होते हैं।
So it, whatever water falls on it, it falls off.
तो जो भी पानी उसके ऊपर गिरता है वो तुरंत ही मतलब अलग हो जाता है।
So they're always fresh and clear and pure.
और इसलिए वो हमेशा ही स्वच्छ रहते हैं और ताजे तरोताजा रहते हैं।
And yet they come from deep in the mud.
लेकिन वो बहुत ही गहरे ऐसे मिट्टी से वो खिलते हैं।
So I think obviously it suggested that it's after the Buddha as an image.
तो निश्चित ही बुद्ध को एक रूपक के तरह उनसे कुछ मतलब सुझाया होगा।
Because of all these factors.
और इन सब तथ्यों की वजह से।
And of course it's part of the greatness of an artist to be able to recognize an appropriate image.
और शायद एक किसी मतलब कलाकार की भी आप कह सकते हैं मतलब ताकत कि वो किसी रूपक को इतने गहराई से समझ पाए।
The artist sees the whole world as full of symbols.
तो एक कलाकार जो होता है उसे पूरी दुनिया जो है वो प्रतीकों की तरह नजर आती है।
So it's as if the Buddha sees the whole world as full of meaning.
तो जैसे बुद्ध है पूरे विश्व को एक अर्थ के स्वरूप में देखते हैं, अर्थ से भरा हुआ पाते हैं।
So he'd immediately see an image that could communicate something important.
तो उन्होंने उन्हें तुरंत ही वो प्रतीक दिखा ही दिया कि जो उनके अर्थ को लोगों तक पहुंचा पाएगा। What work is going on in there in England about Buddhism?
In England, well, quite a lot.
तो बहुत काम हो रहा है इंग्लैंड में।
Not well, it's not as if anything like a majority of people are Buddhist.
तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ की अधिकतर जो लोकसंख्या या लोग हैं वो बौद्ध हैं।
But there are many different Buddhist groups there.
लेकिन वहाँ पे बहुत से अलग-अलग बौद्ध धर्म को मानने वाले समुदाय हैं।
And amongst those groups are Tri Ratna Bauddha Mahasangha is one of the leading ones.
और इन समूहों में सबसे अग्रसर जो है वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लोग हैं।
So most major cities like London or Birmingham or Manchester, they will have a number of different centers.
तो बर्मिंगहम मैनचेस्टर लंदन ऐसे जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध केंद्र हैं
And, they'll have many activities at those centers.
और उन केंद्रों पे बहुत सी विभिन्न ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं
They teach meditation, teach Buddhadhamma.
वो ध्यान सिखाते हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में सिखाते हैं
we have various in our movement we have various businesses where people can work together
हमारे आंदोलन में भी ऐसे हैं हमारे बहुत सारे व्यवसाय भी हैं जहां पर लोग इकट्ठा काम करते हैं
we have communities where people can live together
हमारे कुल है जहां पे लोग एक साथ रहते हैं
so yes there's quite a lot going on
तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हो रहे हैं
I can't give you numbers I can't give you statistics
तो मैं आपको कितनी कहाँ पे क्या कितनी संख्या है ये मैं नहीं बता पाऊंगा
I think in the recent census something like 2% of people said they were Buddhist 1% of people said they were Buddhist
तो अभी जो वहाँ पे लोकसंख्या की गणना हुई है वहाँ पे कम से कम 1% लोगों ने या 2% लोगों ने कहा कि वो बौद्ध हैं
and of course many of them will be very loosely Buddhist
और उनमें से बहुत सारे सिर्फ ऐसे ही मतलब ढीले ढाले ऐसे बौद्ध हैं
but 100 years ago the number would have been zero
लेकिन अगर आप 100 साल पहले देखें तो ये जो नंबर है वो शायद शून्य था
And it'll be the same all over Europe, all over North America.
और पूरे यूरोप में या पूरे उत्तर अमेरिका में यही हाल है
There's a lot of interest.
तो बौद्ध धर्म में लोगों को बहुत रुचि है
And the influence of Buddhism is much wider.
तो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है बहुत बहुत व्यापक है
many people have heard something about Buddhism.
बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ ना कुछ सुना है
So for instance, in British schools, it's compulsory that children, that students, are taught all the major religions.
तो ब्रिटेन में सभी स्कूलों के लिए ये मतलब कंपलसरी है कि जो प्रमुख धर्म है उन धर्मों के बारे में वहाँ के विद्यार्थियों को सिखाया जाए
So most people will know something about Buddhism.
और इसलिए बहुत से लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है
they're often very impressed by what they hear.
और जो कुछ भी वो सुनते हैं उससे वो बेहद ही प्रभावित होते हैं
There's even a saying by the future king of England.
तो इंग्लैंड का जो भविष्य का राजा है उसकी उसके बारे में भी एक कहानी है
You know that instead of a president, we have a queen.
तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के स्थान पे हमारे यहाँ रानी है
I know it seems very odd, but we do have that.
तो आपको बहुत विचित्र लगता होगा पर हमारे यहाँ है
And the Queen's eldest son, Prince Charles, will one day be king.
और रानी का जो बड़ा बेटा है प्रिंस चार्ल्स वो एक दिन राजा बनेगा
And he said he thinks the best religion is Buddhism.
और उसको ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा अगर कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है
But he probably can't become a Buddhist because It's supposed to be a Christian country.
लेकिन वो बौद्ध बन नहीं सकता क्योंकि वो एक क्रिश्चियन देश है
So yes, there's a lot of influence of Buddhism, even if not so many people call themselves Buddhists.
तो बहुत से लोग भले ही अपने आप को बौद्ध नहीं कहते फिर भी बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव है
And our order is working very vigorously throughout Britain.
और पूरे ब्रिटेन में हमारा जो संघ है बहुत ही मतलब सक्रिय रूप से कार्यरत है
Anything? So what to do? A little bit more or... yeah? Okay, we'll carry on with the next verses.
तो अगली जो गाथा है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे.
So we move on to the reverence to the three jewels which takes us deeper into what we've done.
तो हम त्रिरत्नों को नमन की ओर आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हमने जो देखा है उससे हम और थोड़ा गहरे जाएंगे
up until now we've been reverencing the Buddha.
तो अभी तक हम बुद्ध को केवल नमन कर रहे थे अपना आदर व्यक्त कर रहे थे.
We've seen the Buddha as way above us, far beyond us.
तो हमने बुद्ध को इस तरह से देखा कि वो हमारी पहुंच से बहुत परे हैं.
But now we need to commit ourselves to closing the gap.
लेकिन अभी हमें हम अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना है कि उनके और हमारे बीच का जो अंतर है उसे मिटाना है.
So we say we reverence the Buddha and aspire to follow him.
तो हम ये कहते हैं कि हम नमन करते हैं हम बुद्ध को और अभिलाषा रखते हैं उन्हें अनुसरण करने की.
We've got to follow the Buddha.
तो हमें बुद्ध का अनुसरण करना है.
Not just worship him and hope that he will bless us.
तो केवल उनकी पूजा नहीं करनी है और ये आशा नहीं करना है कि वो हमें आशीर्वाद देंगे.
That's what so much religion in the world is about.
तो दुनिया के बहुत सारे धर्मों में ऐसा ही होता है.
You look to some figure up there and you say, oh please help me, please give me what I need.
तो आप किसी मतलब मूर्ति की ओर देखते हैं और आप कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो मतलब या मुझे आशीर्वाद दे दो.
Well, that, if that's okay, if people want to do that.
अगर लोग ऐसा करना चाहते हैं तो वो ठीक है.
But in Buddhism we say, no, that's not enough.
तो बौद्ध धर्म में हम कहते हैं नहीं इतना पर्याप्त नहीं है.
What we admire, we must become.
तो जो चीज को हम मतलब अपना आदर्श मानते हैं तो उसके तरफ बनने का हमारा ध्येय भी होना चाहिए.
Yes, the Buddha may be way beyond us.
तो हाँ बुद्ध हमसे बहुत दूर हो सकते हैं.
But we should aspire to become him.
लेकिन उनका अनुसरण करने की हमें अभिलाषा होनी चाहिए.
Every one of us can become a Buddha.
तो हम में से हर एक जो है वो बुद्ध बन सकता है.
And being a Buddhist means committing yourself to becoming like the Buddha.
और बौद्ध धर्म बौद्ध बनने का अर्थ ये होता है कि अपने आप को बुद्ध की तरह बनने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करना.
So we don't just reverence the Buddha, we aspire to follow him.
तो हम बुद्ध को केवल नमन ही नहीं करते परंतु हम उनकी तरह बनने की अभिलाषा रखते हैं.
And we reflect deeply that the Buddha started the same as us.
और हम ये भी स्मरण रखते हैं कि जैसे हमने शुरुआत की है वैसे ही बुद्ध ने भी शुरुआत की थी.
The Buddha was born as we are born.
तो बुद्ध का जन्म वैसे ही हुआ था जैसे हमारा जन्म हुआ है.
The Buddha wasn't born sitting on a lotus.
तो बुद्ध कोई कमल पुष्प पे बैठे हुए उनका जन्म नहीं हुआ था.
He wasn't swayambhu.
और वो कोई स्वयंभू नहीं थे कि स्वयं निर्मित नहीं थे.
He was born in the usual way.
तो जैसे इंसानों का जन्म होता है वैसे उनका जन्म हुआ था.
He had a mother and a father.
उनके माता थे और उनके पिता थे.
He started as a little baby.
और एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया.
He needed looking after as a baby.
और एक बच्चे की देखभाल की जाती है वैसे देखभाल की उन्हें आवश्यकता थी.
I don't know, maybe he was naughty when he was a baby.
शायद मुझे पता नहीं पर वो जब बच्चे थे तब शायद शैतान भी होंगे.
I hope he was, because that's what baby should be.
और मुझे लगता है उन्होंने होना ही चाहिए क्योंकि बच्चों ने शैतान होना चाहिए.
He was born just like us.
तो हमारी ही तरह उनका जन्म हुआ था.
So when we look at the Buddha, we're not looking at something different from us in a way.
तो जब हम बुद्ध की तरफ देख रहे थे तो अपने आप से अलग ऐसे किसी चीज की ओर हम नहीं देख रहे.
He was a human being.
वो मनुष्य थे.
Just like us.
और हमारी ही तरह मनुष्य थे.
So that should make us realize that we can become like him.
तो इससे हमें ये मतलब समझ जाना चाहिए कि हम भी वैसे बन सकते हैं.
The religion I was brought up in, well, you're here and God is there.
तो जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ था तो मैं यहाँ था और ईश्वर वहाँ था.
You have to stay down here and he will stay up there.
तो आपको हमेशा यही रहना होता था और वो हमेशा वहीं रहेंगे.
All you can do is obey his orders.
और आपको सिर्फ इतना करना था, आप सिर्फ इतना कर सकते थे कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें.
But humanity can never become God.
और मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता.
God, well, he did become man, but that's another story.
और मनुष्य हाँ वो एक बार ईश्वर हाँ वो एक बार मनुष्य बने थे लेकिन वो अलग कहानी है.
But in many religions, yes, the ideal is up there and you are here.
लेकिन बहुत से धर्मों में आदर्श जो है वो वहाँ होता है और आप यहाँ होते हैं.
And you can never close the gap.
और आप जो है इस अंतर को कभी मिटा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते.
Yes, you can have some sort of communication, you can put yourself in harmony.
तो आप पे बातचीत कुछ हो सकती है, आप एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रख सकते हैं.
But in the Buddha Dharma, you can become the ideal.
लेकिन बौद्ध धर्म में आप अपना आदर्श का स्थान पा सकते हैं.
The ideal is an ideal for your life.
वो जो आदर्श है वो आपके जीवन के लिए आदर्श है.
This is the essence of the difference between the Buddha Dharma and perhaps most other religions.
और बहुत से जो अन्य धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उसमें जो अंतर है उसका ये सार है.
Yes, the Buddha is so far beyond us.
हाँ बुद्ध निश्चित ही हमसे बहुत परे हैं.
But there's a direct connection between us and him.
लेकिन उनके बीच में और हमारे बीच में सीधा ऐसा एक संबंध है.
And yes, we see the Buddha as our ideal.
और हाँ, हम बुद्ध को अपने आदर्श के स्वरूप में देखते हैं.
We don't see the Buddha, for instance, as the creator of the universe.
तो हम बुद्ध को इस तरह से नहीं देखते कि वो विश्व के निर्माता हैं.
The universe came into existence, or it continued in existence for reasons that science can discover.
तो विश्व की निर्मिति हुई थी और विश्व निरंतर वैसा चला आ रहा था, इसकी वजह भी है जो विज्ञान आपको बता सकता है.
That's not a question for us.
तो वो हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं.
This is one of the reasons why Dr. Babasaheb Ambedkar chose Buddhism.
और ये एक कारण है कि क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था.
Because it's not in conflict with science.
क्योंकि ये विज्ञान से विसंगत नहीं है.
Those issues of scientific laws don't disturb our belief in the Buddha.
तो ये जो विज्ञान के जो भी नियम है उसके वजह से बुद्ध में हमारी जो श्रद्धा है उसे कोई ठेस नहीं पहुंचती है, उससे वो विचलित नहीं करता.
The Buddha is not the judge.
तो बुद्ध कोई जज नहीं है.
Usually the god or whatever is the judge of our actions.
तो ईश्वर या वो और कोई जो है वो हम जो भी कृतियां करते हैं उसके विषय में फैसला लेने वाले होते हैं.
The judge and the executioner.
तो फैसला लेने वाला और शिक्षा सुनाने वाला.
But no, the Buddha is not like that.
लेकिन बुद्ध वैसे नहीं है.
Again, that judging is a natural process.
तो वापस ये जो किसी चीज को निर्णायक रूप से देखना, ये एक बहुत ही स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया है.
If we act wrongly, we will feel it.
अगर हम कुछ बुरा कार्य करते हैं तो हम उसे महसूस भी करेंगे.
It will come back at us.
और वो जो है हम तक वापस भी आएगा.
It will affect us inside.
भीतर से वो हमें प्रभावित भी करेगा.
It's just a law of the mind, the law of the way the mind works.
और ये मन का नियम है. मन किस तरह से कार्य करता है वो एक नियम है.
This is what we call the law of karma in Buddhism.
और बौद्ध धर्म में हम इसे कर्म का नियम कहते हैं.
It's a natural principle, just like the law of gravity.
तो ये एक बहुत ही नैसर्गिक ऐसा नियम है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम.
A bad mental state creates unpleasant consequences for you.
तो बुरी जो मानसिक अवस्थाएं हैं वो आपके लिए अनचाही ऐसी परिस्थितियां निर्माण करती हैं.
So the Buddha isn't the creator, he's not the judge.
तो वो कोई निर्माता नहीं है या वो कोई फैसला लेने वाले भी नहीं है.
He's the ideal.
वो आदर्श है.
He's the ideal for humanity.
और मनुष्यता के लिए वो एक आदर्श है.
So yes, we really reflect deeply on his connection with us.
और इसलिए उनका हमारे साथ जो संबंध है उसके विषय में हम गहराई से चिंतन करते हैं.
That's one of the wonderful things about coming to India for me, a Western Buddhist.
तो एक पाश्चिमात्य बौद्ध होने के नाते भारत में आना मेरे लिए बहुत विशेष था.
I see people who look like the Buddha must have looked.
तो मैं बहुत ऐसे लोगों की तरह देखता हूँ जैसे वो बुद्ध की ओर देखते हैं.
You lot.
आप जैसे.
He looked like you lot.
तो वो आपके जैसे ही दिखते थे.
He didn't look like me.
वो मेरी तरह नहीं दिखते थे.
Well, he did. He had a head and two arms and all that.
तो हाँ, वो मेरी तरह दिखते थे कि उनके पास एक सर था या दो हाथ थे, लेकिन वो आपकी तरह दिखाई देते थे.
Probably he came from the tribal area in the Terai, Nepalese Indian Terai.
तो तराई का जो परिसर है जो नेपाल के और भारत के पास में है, वहाँ के जो कबीले हैं वहाँ से वो शायद आते थे.
But yes, you come here and you feel immediately you're sort of connected with the Buddha through you lot.
लेकिन आप यहाँ पे आते हैं और आप सब लोगों के जब वो चेहरे वगैरह देखते हैं तो लगता है कि आप वो बुद्ध के साथ संबंधित हैं.
And then you can go to the places where the Buddha would have been.
और फिर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे शायद बुद्ध भी गए थे.
Who's Buddha Gaya, of course.
और बुद्ध गया उनमें से एक है.
And you feel yes. He was here. He did gain enlightenment here.
और आपको वो अनुभव होता है कि हाँ, वो यहाँ थे और यहाँ पे उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था.
And you see the places that were connected with his life.
और आप ऐसी जगह भी देखते हैं जो उनके जीवन के साथ संबंधित थी.
And you know that these are genuinely connected with his life.
और आप जानते हैं कि निश्चित ही ये जगह जो है ये उनके जीवन के साथ संबंधित थी.
It's not some sort of mythology.
तो ये कोई कथा या कहानियां नहीं है.
It's not like Ram Shetty between Sri Lanka and India.
तो ये राम सेतु की तरह नहीं कि वो कहते हैं श्रीलंका और भारत के मध्य में है.
You know, if you look for it, you won't find it, I'm afraid.
और आप आप उसे अगर ढूंढने जाते हैं तो वो आपको वहां नहीं मिलता है.
These places are connected with the Buddha. We've got historical records of him being there.
लेकिन ये जगह बुद्ध के साथ संबंधित है और इसके लिए हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है.
He was a real human being.
वो एक सही मायने में मतलब जीते जागते इंसान थे.
If you'd met him, you'd have thought of him both as a human being, but you'd also have sensed something utterly remarkable about him.
तो अगर आपकी उनसे मुलाकात हुई होती तो आप निश्चित ही देख पाते कि हाँ वो मनुष्य ही है, लेकिन उनके विषय में कुछ ऐसा है जो बहुत ही अलग है.
So we realize that the Buddha was a human being like us.
तो हम जानते हैं और महसूस करते हैं कि बुद्ध हमारी ही तरह मनुष्य थे.
And that tells us that what he overcame, we too can overcome.
और इसलिए हम ये जानते हैं कि जिस चीज को उन्होंने पराजित किया था उसे हम भी कर सकते हैं.
Well, that's an interesting question. What did he overcome?
तो ये बहुत ही ऐसे मतलब रोचक ऐसा प्रश्न है कि उन्होंने किस चीज को पराजित किया था.
You could say, first of all, it's unskillful negative mental states.
तो आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम ये जो है अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं.
Then you could say it's clinging on to self, it's selfishness.
और कह सकते हैं कि स्वार्थ या अपने आत्म के साथ जो मतलब हमारी आसक्ति होती है उससे वो परे उठ गए थे.
He overcame his own selfishness.
तो अपने स्वार्थ से वो ऊपर उठ गए थे.
He overcame his own mental confusion.
अपने स्वयं के मानसिक संभ्रम से वो ऊपर उठ गए थे.
He didn't overcome anything out there.
तो बाहर के किसी चीज पे उन्होंने विजय नहीं पाई थी.
He overcame himself.
तो उन्होंने स्वयं के ऊपर विजय हासिल की.
The Buddha says in one of the texts that better than a victory over 1,000 enemies 1,000 times is the victory over yourself.
तो एक गाथा में बुद्ध ऐसे कहते हैं कि 1,000 शत्रुओं के ऊपर विजय पाने से अच्छा है आप स्वयं पर विजय हासिल करें.
That's the battle that he fought and won.
तो ये वो युद्ध है जो उन्होंने लड़ा था और जिसमें उनकी विजय हुई थी.
And what he did, we can do.
और जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं.
He was essentially the same as us.
और निश्चित ही वो हमारी ही तरह थे.
So when we're meditating, we're engaged in the same struggle as him.
तो जब हम ध्यान करते हैं तो जिस संघर्ष में वो उलझे हुए थे उन्हीं संघर्षों में हम भी उलझते हैं.
You've done the metta bhavana, have you? Yeah. Well, you know, in the fourth stage of the metta bhavana, you put your enemy in front of you.
तो आप जानते हैं कि मेता भावना की जो चौथी पायदान है उसमें आप एक शत्रु को लेते हैं.
I don't know how you found that.
तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या अनुभव आया था.
I remember when I first did it, I just would not send Maitri to my enemy.
मुझे याद है जब मैंने पहली बार किया था तो मैं अपने शत्रु पर बिल्कुल मैत्री नहीं कर पा रहा था.
After what he has done, I'm not sending metta to him.
तो जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद मैं उसको मेत्ता नहीं पहुंचा रहा हूँ उस तक.
Gradually you overcome yourself.
और धीरे धीरे आप इस पर विजय पाते हैं.
You gradually manage to sense some little bit of goodwill towards him.
और धीरे धीरे आप थोड़ी बहुत अच्छी भावनाएं जो है वो उस तक पहुंचाने लगते हैं.
And sometimes it's very difficult indeed.
और कभी कभी ये बहुत ही मुश्किल होता है.
Then when you've done anapanasati.
या फिर आपने अनापान सती किया है.
Your mind keeps going back to its usual circles of preoccupation.
तो आपका मन जो है बार बार उसे उलझाए रखने वाली चीजों में ही उलझता जाता है.
You just can't get your mind to settle. You can't get your mind to still.
तो आपके मन को स्थिर होने के लिए या एक जगह पे रुकने के लिए आप नहीं उसे रोक पाते हैं.
But eventually, yes, you manage to focus.
लेकिन धीरे धीरे आप मतलब एकाग्र हो पाते हैं.
You begin to be absorbed in the breathing.
तो आपके अपनी जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें आप रस लेना आरंभ करते हैं.
That's a victory over yourself.
तो ये आपका अपने आप के ऊपर विजय है.
Every time you stop yourself from doing something that's unskillful, that's bad, There's a victory over yourself.
तो हर बार जब कोई अपना मतलब अकुशल कार्य करने से आप अपने आप को रोकते हैं वो आपके स्वयं के ऊपर प्राप्त की गई विजय है.
Every time you get rid of some superstition, some foolish thinking, that's a victory over yourself.
हर बार आप जब किसी अंधश्रद्धा या किसी मूर्खतापूर्ण सोच से अपने आप को दूर रखते हैं वो आपकी स्वयं के ऊपर की विजय होती है.
And the Buddha had done that completely.
और बुद्ध ने ये पूरी तरह से कर लिया था.
So what he did, we can do.
तो उन्होंने जो किया है वो हम भी कर सकते हैं.
And we can get what he got.
और हम वो पा सकते हैं जो उन्होंने पाया था.
What he attained, we can attain.
जो उन्होंने हासिल किया था हम भी हासिल कर सकते हैं.
And as we know, he attained Bodhi, he attained Buddhahood.
और जैसे हमें पता है कि उन्होंने बोधि या बुद्धत्व को हासिल किया था.
So this is very, very important consideration for us.
तो ये सोचने के लिए विचार करने के लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है.
When we reverence, we see something as far from us.
जब हम आदर व्यक्त करते हैं या नमन करते हैं तो किसी चीज को हम अपने से बहुत दूर देखते हैं.
But we have to then commit ourselves to closing the gap.
लेकिन फिर हमें अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना होता है कि उस अंतर को जो है वो हम कम करें.
If we just stay reverencing, well, that's no good.
तो हम बस अगर आदर या नमन ही करते रहे तो ऐसा कभी नहीं होगा.
We're not changed at all.
क्योंकि हम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा.
Everything remains the same.
और हर चीज जैसी है वैसी रहेगी.
So we commit ourselves to closing the gap.
तो इसलिए हम अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं कि उस अंतर को हम कम करेंगे.
We remember that what the Buddha overcame, we too can overcome.
तो हम ये बात याद रखते हैं कि जिसको बुद्ध ने पराजित किया था उसे हम भी पराजित कर सकते हैं.
What the Buddha attained, we too can attain.
जो बुद्ध ने हासिल किया था वो हम भी हासिल कर सकते हैं.
And we know that we can do that because he was a human being like us.
और हम जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह मनुष्य थे.
He was born just as we were born.
वो उनका जन्म वैसे ही हुआ था जैसे हमारा जन्म हुआ है.
So you can see when we say these words in the puja, they have a very profound meaning.
तो आप देख सकते हैं कि जब पूजा में हम इन शब्दों को कहते हैं तो उनका बहुत ही गंभीर ऐसा अर्थ है.
In effect, you're committing yourself to becoming like the Buddha.
तो एक तरह से आप अपने आप को इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर रहे हैं कि आपको बुद्ध की तरह बनना है.
Anyway, that's enough for today.
तो आज के लिए इतना पर्याप्त है.
I hope that you're getting deeper into this wonderful text.
तो मुझे आशा है कि ये बहुत ही सुंदर ऐसा जो काव्य है गाथा है पठन है उसकी गहराई में आप जा रहे हैं.
It's very simple.
तो ये बहुत ही सरल है.
But it could not be more profound.
लेकिन इससे गंभीर और कुछ नहीं हो सकता.
So if you can reflect a little bit on what that says.
तो अगर आप और इस पे सोच पाए कि ये क्या कहना चाह रहा है.
And when we do the puja tonight, well, you can try to put a bit of feeling into it.
तो आज शाम जब हम पूजा करेंगे तो शायद आप अपनी कुछ भावनाओं को उसके साथ जोड़ सकते हैं.
You really are taking a step when you say these words.
और जब आप इन शब्दों को कह रहे हैं तो सही में आप एक पहल कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं.
थैंक यू.
धन्यवाद.